हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तभी करिश्मा जी ने अमरेंद्र जी की ओर देखते हुए कहा था, देखिए अगर आप अमित की शादी कर रहे हैं तो अमन ने भी अपनी एक इच्छा जाहिर की है। देखिए जब अमन की शादी हुई थी आप उसकी शादी में मौजूद नहीं थे, तो अब अमन ने फैसला किया है कि वो भी तारा के साथ सारे फंक्शन करना चाहता है। जैसे ही करिश्मा ने ये कहा, अमरेंद्र जी भावुक हो गए थे और कहने लगे थे, क्या वाकई मेरा बेटा अपनी शादी एक बार फिर मेरी आंखों के सामने करना चाहता है? इससे अच्छी बात तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। कहीं ना कहीं अमरेंद्र जी खुश हो गए थे कि चलो अमित के साथ साथ उन्हें अमन की शादी भी देखने का मौका मिलेगा। तो उन्होंने कह दिया था, तो ठीक है तुम जल्दी से उस सोनल बेटी जो वेडिंग प्लानर है उसे बुलाओ और बोलो कि वो तारा बेटी को भी तैयार करे और उसे हल्दी के कपड़े पहनाए। आज मेरे दोनों बेटों की हल्दी होंगी। ऐसा कहकर अमरेंद्र जी खुश हो गए थे और जल्दी वहां पर काफी सारे ढोल नगाड़े बजाने लगे थे और अमरेंद्र जी खुशी से झूम रहे थे। वहीं अमन बहुत ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि तारा को पाकर उसे ऐसा लगने लगा था मानो कि उसे जिंदगी में किसी और की जरूरत है ही नहीं, जब चाहे उतना ज्यादा प्यार कर सकता था। इसीलिए उसने सोचा क्यों ना तारा से एक बार और शादी कर ली जाए। उसके बाद तो ना तारा इस जन्म के लिए ही नहीं मिलकर अगली बार जितने भी 7 जन्म होते होंगे या उससे भी ज्यादा जन्म होते होंगे हमेशा हमेशा के लिए तारा सिर्फ और सिर्फ उसकी रहेगी। तो ये सोचते हुए अमित से जलने के बजाय खुद की हल्दी मेहंदी और शादी का फंक्शन तैयार करवा लिया था। वहीं दूसरी ओर काफी देर हो चुकी थी लेकिन अभी तक काले शक्तियों का मालिक अमित लौटकर नहीं आया था, क्योंकि उसके पास इतनी शरीर में ताकत ही नहीं बची थी कि वो आकर अपनी हल्दी का फंक्शन अटेंड कर सके। हालांकि धरा को सोनल परी ने तैयार करवा दिया था, लेकिन जैसे ही वो तारा को बुलाने के लिए उसके कमरे में गई तो उसने देखा तारा ने दरवाजा बंद करके रखा हुआ था और वो दरवाजा खोलना नहीं चाहती थी। तब सोनल परी को कुछ अजीब सा एहसास हुआ और उसने मन ही मन में तरस से कोऑर्डिनेट करने का फैसला लिया, लेकिन तारा कुछ भी किसी भी बात का सोनल परी की जवाब नहीं दे रही थी। अब तो सोनल परी काफी परेशान हो चुकी थी, इसलिए सोनल परी ने जल्दी ही अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करते हुए बिना दरवाजा खटखटाए सीधा तारा परी के कमरे में आ गई थी। वेल, सोनम परी जल्दी ही अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारा के कमरे में चली गई थी, लेकिन उसके चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाकर देख लिया था, तारा परी उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। अब तो सोनाली परी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि इस तरह से तारा भना कहां गायब हो सकती थी, जबकि आज हल्दी का फंक्शन में उन्हें कितना बड़ा काम करना था। उन्हें अमित की सच्चाई सबके सामने लानी थी, जो भी उन्होंने प्लान बनाया था उसे प्लान को एग्जीक्यूट करना था, तो इस तरह से तारा परी बिना सोनम परी को बताए कहां गायब हो सकती थी। और जैसे ही सोनम परी तारा परी के कमरे से बाहर जाने लगी तभी अचानक से सोनल परी को तारा के बाथरूम में होने का एहसास हुआ था और वो एक बार फिर अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारा परी के बाथरूम में चली गई थी, क्योंकि उसने पहले तारा परी को आवाज लगाई थी लेकिन तारा का उसे कोई जवाब नहीं मिला था। और जैसे ही वो उसे बाथरूम में अंदर गई तो सोनल परी की आंखें हैरानी के मारे फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि तारा परी एकदम बिल्कुल नग्न बदन अपने आप को शीशे में निहारे जा रही थी। जैसे ही सोनम परी ने ये देखा वो पूरी तरह से हैरान हो गई और जल्दी से उसने अपनी जादुई छड़ी का प्रयोग करते हुए तारा परी को बड़े ही खूबसूरत से कपड़े पहना दिए थे जो कि एकदम येलो कलर के थे। और तब वो तारा परी के पास गई थी और उसके कंधे को पकड़कर कहने लगी थी, ये क्या हो रहा है तारा, और तुम ऐसी हालत में यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ है, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? बोलो ना मुझे, बताओ क्या बात है, बोलो। ऐसा कहकर वो तारा परी से सवाल करने लगी थी, लेकिन तारा तो उस वक्त कुछ अलग ही ख्यालों में खोई हुई थी, क्योंकि तारा का दिल आज चकनाचूर हो गया था। उसे आज अमन के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाने के बाद बिल्कुल उसी तरह से फीलिंग आई थी जिस तरह से वो राक्षस जो परीलोक में मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ था वो उसके साथ जिस्मानी रिश्ता बनाया करता था। और सोनल परी का साथ पाकर अचानक से तारा परी अपना धैर्य खो बैठी थी और उसने सोनल परी को गले से लगाकर जोरों से रोना शुरू कर दिया था। हालांकि तारा परी की आंखों से आंसू नहीं निकला करते थे, सिर्फ और सिर्फ मोती ही निकला करते थे। और जैसे जैसे तारा परी की आंखों से निकले हुए मोती बाथरूम की फर्श की टेल पर गिर रहे थे वैसे वैसे वो टूटकर चकनाचूर होकर गायब हो रहे थे। सोनल परी अब तारा परी की इतनी बुरी हालत देखकर पूरी तरह से घबरा गई थी और वो उसे संभालने की कोशिश करने लगी थी। हालांकि उसने उन्हें कपड़े पहना दिए थे लेकिन फिर भी वो जानना चाहती थी कि आखिरकार उसकी प्यारी सहेली उसकी रानी परी के साथ हुआ क्या है। तब सोनल परी ने जैसे तैसे तारा पारी को शांत करवाया था और शांत करते हुए उसे बाथरूम से बाहर कमरे में ले आई थी और बेड पर बैठकर खुद उसके करीब बैठकर उसे कहने लगी थी, आखिरकार बात क्या है तारा, अगर तुम इस तरह से मुझसे छुपाओगी तो भला मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगी। तभी अचानक तारा सोनल परी की ओर देखकर कहने लगी थी, सोनल सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं अमन से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत किया करती थी, उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। तो जानती है जब जैसे जैसे मेरा परीलोक जाने का समय करीब आता जा रहा था वैसे वैसे मेरा दिल टुकड़े टुकड़े होते जा रहा था, क्योंकि अमन के बिना रहने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन आज मेरी मोहब्बत ने मेरे मुंह पर बहुत जोरों से तमाचा मारा है। आज उसने मेरे साथ जबरदस्ती करके मुझे उस परीलोक के राक्षस की याद दिला दी है, क्योंकि आज मुझे इस बात का भी एहसास हो गया है कि चाहे कोई औरत इंसान हो, परी हो, जिन हो या कोई भी और मखलूक हो, औरत के लिए उसका जिस्म किसी भी मर्द के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और आज मेरे मना करने के बावजूद भी अमन सर ने मेरे साथ जबरदस्ती रिश्ता बनाया। जैसे ही सोनम परी ने तारा परी की बातें सुनी वो पूरी तरह से हक्का बक्का रह गई थी। कहां तो वो थोड़ी देर पहले खुद अक्षत के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाने के बारे में सोच रही थी और कहां अब वो अपनी प्यारी सहेली की बातें सुनने के बाद पूरी तरह से हैरान हो गई थी। हालांकि अमन तो तारा का पति था, लेकिन किसी औरत के साथ जबरदस्ती करने का हक उसके पति को भी नहीं था। अब सोनल परी को कुछ समझ में नहीं आया कि वो तारा को इस हालत में कैसे संभाले, तो उसने तारा का हाथ पकड़ लिया था और उसने कहना शुरू कर दिया था, मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि इस वक्त तुझ पर क्या गुजर रही है, लेकिन ये वक्त ये सब बातें सोचने का नहीं है। हम जिस मकसद के लिए यहां आए हैं हमें वो फटाफट से मकसद पूरा करना होगा, और जब तक जिन्नाटों का वंशज पूरा नहीं हो जाता तब तक तुझे अमन के पास रहना ही होगा। अगर अमन तुम्हारे साथ चाहे किसी भी तरह का बर्ताव क्यों ना करे तुम्हें हर बर्ताव सहना होगा। कहीं ना कहीं सोनम परी एकदम प्रैक्टिकल तरीके से तारा परी को समझाने की कोशिश कर रही थी कि अमन चाहे उसके साथ रोज ही जबरदस्ती क्यों ना करे लेकिन उसे सब कुछ बर्दाश्त करना ही होगा, और वैसे भी उसे हर हाल में उसे राक्षस की जान लेनी थी।
इसके लिए ये जबरदस्ती तो कुछ भी नहीं थी, और वैसे भी तारा भी अमन से मोहब्बत करती थी। हो सकता है कि अमन से गलती हो गई हो और वो उसे अपनी माफ़ी भी मांग ले। तो इसी तरह से सोनल परी के मन में जो आ रहा था वो तारों को समझने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन तारा का मन अंदर से उदास हो चुका था, उसका दिल कुछ भी बात करने का नहीं कर रहा था। तभी सोनल परी ने तारा की ओर देखकर कहा था, तुम्हें अभी अपना मूड ठीक करना होगा, वैसे भी काली शक्तियों का मालिक अमित अभी तक अपनी हल्दी के फंक्शन में नहीं आया है, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि आज इस हल्दी के फंक्शन में हमें उसकी अच्छाई वाली इमेज को खत्म करना होगा। तभी तारा को याद आया था कि उसने तो उसे आज खींचकर एक जोरदार तमाचा उसे मारा था, तो उसके बाद उसका इस तरह से यहां आना पॉसिबल नहीं था। जरूर उसने कुछ ना कुछ घटिया हरकत की होगी। तब तारा खुद को संभालते हुए धीरे से खड़ी हुई थी और सोनल परी के हाथ पकड़कर कहने लगी थी, मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह से समझ गई हूं, फिलहाल मुझे इन सब बातों में नहीं सोचना चाहिए, मैं अभी आती हूं, तुम चलो। तब सोनल परी ने तारा का हाथ पकड़कर कहा था, वो इसी के साथ साथ मुझे तुझे एक और बात भी बतानी थी, वो अमन सर ने करिश्मा जी के सामने और अमरेंद्र जी के सामने तुमसे एक बार और तुम्हारे साथ हल्दी का फंक्शन, साथ साथ मेहंदी और शादी का फंक्शन करने का डिसीजन लिया है। क्या? या, जैसे ही तारा ने ये सुना वो पूरी तरह से हैरान हो गई थी और कहने लगी थी, तुम ये क्या कह रही हो, हमारी शादी तो हो चुकी है और इस तरह से मैं दूसरी बार अमन से शादी भला कैसे कर सकती हूँ। तुम अच्छी तरह से जानती हो अगर अमन ने मुझसे दूसरी बार शादी कर ली तो मैं चाहकर भी परलोक में ही जा पाऊंगी, मैं हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ बंधन में बन जाऊंगी। तारा की बात सुनकर अब सोनम परी को जल्दी ही रियलाइजेशन हो गया था कि तारा जो कुछ कह रही थी बिल्कुल ठीक कह रही थी, क्योंकि अगर एक बार किसी परी की शादी हो जाती थी दोबारा से उसे शादी करने का कोई अधिकार कोई हक नहीं था, और अगर कोई परी एक बार फिर शादी करती थी तो फिर वो हमेशा हमेशा के लिए उस इंसान के बंधन में बन जाती थी, फिर वो उसके पास से कभी भी भूल कर भी नहीं जा सकती थी। लेकिन तारा परी का तो परीलोक जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, तो इस तरह से वो ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर तारा परीलोक नहीं जाएगी तो वो राक्षस का वध कैसे करेगी, और तारा को हर हाल में उस राक्षस का वध करना ही था। उसके लिए उसने क्या कुछ नहीं किया था, पृथ्वीलोक पर आकर उसने कितने ही तरह की अलग अलग समस्याओं का सामना किया था सिर्फ और सिर्फ उस राक्षस का अंत करने के लिए। तो अपने मकसद के इतने करीब आकर अब तारा परी पीछे नहीं हट सकती थी। तभी सोनल परी ने तारा का हाथ पकड़ती हुए कहा था, मैं तो भूल ही गई थी कि हाँ ऐसा कुछ भी है, लेकिन अब क्या करें, वहां तो वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं और पूरी की पूरी तैयारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हल्दी का फंक्शन तुम्हारा और अमन सर का आज ही होगा। जैसे ही सोनल परी ने ये कहा, तारा पूरी तरह से हैरान हो गई। और जैसे ही तारा ने अपने कपड़ों की ओर ध्यान दिया तो उसने देखा सोनल परी ने अपने जादू के द्वारा उसे ही बड़े ही खूबसूरत सा पीले रंग का जोड़ा पहनाया था, साथ ही साथ उसका पीले फूलों के हार से बना श्रृंगार भी कर दिया था। तब सोनल तारा का हाथ पकड़कर कहने लगी थी, हल्दी मेहंदी और संगीत की ही तो बात है, मुझे लगता है कि तुम्हें बिना किसी नानुकर के ये तीनों फंक्शन कर लेने चाहिए। अगर हम इस तरह से अब शादी की बात को मना करेंगे तो सबको हम पर शक हो सकता है, और वैसे भी शादी वाले दिन हम कुछ ना कुछ करके शादी टाल ही देंगे। अभी के लिए तुम्हें नीचे चलना चाहिए, सोनल की बात सुनकर तारा ने एक पल सोचा था, लेकिन आखिर में उसने उसकी बात मान ली थी और जल्दी ही वो सोनल परी के साथ गार्डन में जाने लगी थी। वहीं दूसरी ओर काली शक्तियों के मालिक अमित ने बड़े ही जोरों से अपना हवन करना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी तक काली शक्तियों के महागुरु उसके सामने प्रकट नहीं हुए थे। और जब तक उसके महागुरु उसके सामने प्रकट नहीं होते और उसके अंदर की कमजोरी को खत्म नहीं करते, तब तक उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर अपना हल्दी का फंक्शन अटेंड कर सके। तो अब कहीं ना कहीं अमित को डर लगने लगा था, क्योंकि उसने जोश में होश खो बैठा था। तारा परी का पूरा गुस्सा उसने मल्लिका के बदसूरत जिस्म पर निकाल दिया था, जिसका खामियाजा उसे अपनी ताकतों को कमजोर करके भुगतना पड़ रहा था। वेल, धीरे धीरे अब अमित को आवाहन करते हुए काफी समय होता जा रहा था, जिससे उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती ही जा रही थी। फिर आखिरकार इन द लास्ट काली शक्तियों के महागुरु उसके सामने प्रकट हो गए थे और अमित की ओर बड़े ही क्रोधित होते हुए देखकर कहने लगे थे, हमने तुम्हें पहले भी मना किया था कि तुम उस बदसूरत बुढ़िया के साथ किसी भी तरह का कोई जिस्मानी रिश्ता नहीं बनाओगे, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी हम तुम्हें कितने ही सारे चांस दे चुके हैं, लेकिन हर बार तुम्हारी वजह से हमारा सारा प्लान खराब हो जाता है। इतना ही नहीं, जो दानव हमने अक्षत के जिस्म में डाला था उसे भी अमन ने मार डाला। कहीं ना कहीं काली शक्तियों के महागुरु को यही लगता था कि अक्षत के अंदर जो दानव था उसको अमन सिंह राठौर यानी कि जिन महाराज अमन ने मारा था, लेकिन उन्हें दूर दूर तक इस बात के बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि उसे दानव को अमन ने नहीं बल्कि एक परीलोक से आई हुई परी सोनल परी ने मारा था।